हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ और खुश होंगे। काफ़ी दिन हो गया मुझे स्टोरी अपलोड किए हुए। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आपको हफ्ते में 2 कहानियाँ ज़रूर लेकर आऊँ। और आज मैं आपको नेहा भारद्वाज की लिखी एक बेहतरीन कहानी प्रेम के रंग रिश्तों के संग, तो बने रहिए मेरे साथ और इस कहानी का मजा उठाइए। नहीं अम्मा, मुझे अभी ब्याह नहीं करना। तू तो जानती है, अभी तो पहले छोटी की शादी करेंगे, केशव को पढ़ा लें, फिर ही हम इस घर गृहस्थी में घुसेंगे। कह दिए बस कह दिए, पर बेटा तब तक तो तुम्हारी ब्याह की उम्र निकल जाएगी। अम्मा कहकर माथे पर आए पसीने को धोती के छोर से पोंछने लगी। निकल जाए तो निकल जाए, हम के सबको ब्याह करेंगे मन से, और फिर तुम और मैं हैं ही साथ। के सब का मन होगा तो साथ रहे, नहीं तो अपनी गृहस्थी संभाले। हाँ हाँ, गृहस्थी संभाले, और तेरी गृहस्थी का क्या, उसे कौन संभाले। कल को हम ना रहें, के सब अपनी गृहस्थी में, चुटकी अपनी में, और तू तेरे संग कौन रहे गरीबी, अम्मा ने झुंझलाते हुए कहा। क्या अम्मा, खाने का मजा ही खराब कर दिए हो, हमें ना खाना अब, कहकर भोला बाहर चला गया। शाम को आया, किसी से कोई बात नहीं की, बस दो गौर किसी तरह मुंह में डाले, क्योंकि जानता था अगर उसने खाना ना खाया तो अम्मा भी ना खाएगी, और दोपहर में खाने का अपमान भी वो कर ही चुका था, इसलिए वो दोबारा नहीं। इसलिए खाकर बाहर आंगन में खाट बिछाकर लेट गया, पर आज नींद कहाँ थी उसकी आंखों में। केशव और छुटकी आवाज लगा लगा कर थक गए, कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला, बस अम्मा और भोला दोनों जागे हुए थे। अम्मा जानती थी कि भोला सोया नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी अम्मा से नाराज होकर सो ही नहीं सकता ना। जैसे ही केशव और छुटकी सोए, अम्मा उठकर बोला। भोला के सिराहने पर आकर बैठ गई, धीरे से उसका सर सहलाकर बोली, भोला सो गया क्या बेटा, आज अपनी अम्मा से नाराज है। नहीं अम्मा, कैसी बात करती हो, हम तुमसे नाराज हो सकते हैं क्या भला, नहीं ना। और भोला झट से कहते हुए उठ बैठा। तो अपनी अम्मा की बात क्यों नहीं मानता बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता है, चंदा चाची ने बताया था, बेचारी का बाप नहीं है माँ है, वो भी मरणासन सोचती है जाने से पहले बिटिया को ब्याह दें। बाकी लड़की बहुत गुनी है, घर के सब काम जानती है, सिलाई कढ़ाई 12वीं पास है। पिता का साया सर से उठ गया तो उसकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। देख ले बेटा, एक बार सोच ले अच्छी तरह, कहकर अम्मा ने भोला का सिर सहलाकर अपनी खाट की तरफ रुक किया। पर अम्मा एक बात बताओ, क्या वो हमसे ब्याह करेगी, हम तो 5वीं फेल और वो 12वीं, भगवान ना करे कल आते ही चूल्हा अलग कर दिया तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। बेटा अभी तो बताया उसकी माँ बीमार है, उसकी खातिर कर रही है ना ब्याह, सिर्फ माँ बाप ही नहीं बच्चे भी माँ बाप के लिए त्याग करते हैं, ये सब पहले ही पूछ लेंगे ना हम, अगर पहले ही से ही मन है तो उसका तू एक बार सोच ले बेटा, कहकर अम्मा लेट गई। पर भोला कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या करे, उसके लिए तो बाबूजी के जाने के बाद अम्मा और उसके भाई बहन ही सब कुछ हैं, उसने तो इन सब के अलावा कभी कुछ चाहा ही नहीं। अगर ये ब्याह है उसके जीवन में खुशी के बजाय अपने अपनों को दुख ले आया, इसी उधेड़ बुन में कब भोला की आंख लग गई, फिर सुबह चिड़ियों की चहचहाट से उसकी नींद खुली। अगली सुबह वही हुआ जिसका भोला को अंदेशा था, चंदा चाची ने आकर अम्मा को फिर से उसी रिश्ते के बारे में सोचने को कहा, क्योंकि उसकी माँ की इच्छा है कि बिटिया को अपने सामने ही डोली में बिठा दें। अब बारी अम्मा की थी, चंदा चाची तो जा चुकी थी और अम्मा ने अपना बहु पुराण शुरू कर दिया। तेरे से चोखी तो वो छोरी है, अपनी माँ की खातिर ब्याह करने को राजी है। एक तू है कि माँ का भगत बना बैठा है, जिसे ब्याह ही नहीं करना। अच्छा अम्मा, जो तेरी मर्जी, हम उसी में खुश। बाकी जो तू चाहे वही सही, जा कर दे ब्याह की तैयारी शुरू। कहकर भोला ने गमछा कंधे पर डाला और गुसल खाने की ओर चले जाने लगा। अम्मा चौके से उठकर दौड़ती हुई आई और बेटे का माथा चूम लिया। सच्ची बोल रहा है ना तू छोरा, कल को मुकर तो नहीं जाएगा ना? अम्मा, पर हम एक बात अभी कह देना चाहते हैं कि अगर उसने हमें तुमसे अलग करने की कोशिश की तो हमसे नहीं हो पाएगा, फिर बाकी जो तुम्हें सही लगे वही करो। अम्मा ने एक पल की भी देरी किए बिना चाची के घर कहलवा भेजा कि लड़की के घर वालों से बात कर लें। दो दिन से देख दिखावे के बाद एक हफ्ते के बाद का मुहूर्त निकालकर भोला और सुधा का एक साधारण सा ब्याह कर दिया गया, क्योंकि अब छुटकी के ब्याह का समय भी नजदीक आ रहा था और दोनों घरों की ही आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए आगे का ध्यान छुटकी की शादी पर और 2 महीने बाद केशव को शहर भेजने में लग गया। घर में एक बहू और एक बेटी है, दोनों ही बहनों की तरह रहती हैं। सुधा ने कब आकर इस घर को अपना बना लिया, किसी को एहसास ही नहीं हुआ। सुधा छुटकी से थोड़ी ज्यादा होशियार भी थी, तो अम्मा ने सुधा से छुटकी को कुछ और तौर तरीके सिखाने को कहा। घर में सबका ध्यान सुधा बखूबी रखती थी और अम्मा सुधा का, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं भोला और सुधा के रिश्ते में वो गर्माहट नहीं आ पाई थी जिसकी अम्मा को रह रहकर चिंता थी। एक तो उनका बेटा संत, ऊपर से इतनी अच्छी बहू, समय रहते ना निभा पाए तो जीवन की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। इसी बीच सुधा ने छुटकी के ब्याह के पूरे समय इतनी जिम्मेदारी से काम किया जिसे भोला के सिवाय कोई अनदेखा ही नहीं कर सका। भोला अपने नाम की तरह बहुत ही भोला था। हाँ, सुधा के इस व्यवहार से वो बहुत खुश और संतुष्ट भी था, पर फिर भी अभी तक पति पत्नी के रिश्ते में आत्मीयता का अभाव था। फसल अच्छी होने से छुटकी का ब्याह बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, साथ ही घर की आर्थिक तंगी भी थोड़ी दूर हो गई थी। अब छुटकी को ब्याहने के बाद सब कुछ पटरी पर आने लगा था, तो अम्मा ने सोच लिया था कि बस अब वो दिलो जान से इन दोनों का रिश्ता सहेजने में जुट जाएगी, पर ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था। छुटकी के पग फेरे के रस्म के अगले रोज अम्मा घर के पिछले हिस्से में अब सामान लगवाने में लगी थी कि जाने कैसे उनका पांव फिसला और रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। हड्डी पूरी तरह से तो नहीं टूटी, पर अम्मा कुछ समय के लिए बिस्तर पर लेट गई। डॉक्टर ने 3 महीने बिल्कुल हिलने से मना कर दिया। प्लास्टर चढ़ाने की जगह तो नहीं थी, पर सीधा लेटना और सभी काम लेटे हुए ही करना था। अब तो अम्मा के धैर्य की परीक्षा थी, पर उनके मन में एक उथल पुथल मची थी। कितनी ही बार उन्होंने भोला को समझाया भी कि सुधा केवल इसी घर की बहू ही नहीं, तेरी पत्नी भी है, कुछ समय उसे भी दिया कर, कहीं घुमाने फिराने ले जा, नहीं तो तू एक घर आई लक्ष्मी को खो देगा। लेकिन भोला अम्मा की बातें सिर झुकाए सुनता, ठीक है अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा, कहकर चला जाता है। और सुधा एकटक भोला को जाता देखती रहती है। एक तो शादी के कुछ समय बाद ही उसने अपनी माँ को खो दिया, भले ही ये भी एक सच था कि अम्मा उसे अब माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देती थी, पर जिसके कारण वो इस घर में आई उसका साथ तो उसे मिला ही नहीं। कभी कभी बहुत उदास भी हो जाती थी, पर फिर अम्मा को भी दुखी देखकर खुद को संभाल लेती। पर कब तक, अब उसका धैर्य भी जवाब देने लगा था। उधर भोला भले ही कुछ ना कहता हो, पर एक अनजान लड़की उसकी माँ का दिन रात ख्याल रखती, दवा खाना पीना नहलाना सब खुद खुद ही करती थी, वो भी बिना किसी नानुकुर के, एक अलग जगह, तो सुधा ने भोला के दिल में बना ही ली थी, बस उसे स्वीकारने भर की देर थी। अब अम्मा को भी 3 महीने पूरे हो चुके थे। डॉक्टर ने धीरे धीरे थोड़ा बैठना, 2 समय की एक्सरसाइज और कुछ हिदायतें भी दी, जिन्हें सुधा ध्यान से सुनती और कहीं किसी चूक की आशा नहीं छोड़ती। वो जानती थी कि अम्मा उसे बेटी से बढ़कर प्यार देती है और वहीं उसके रिश्ते को भी बचाएंगी। अब हो भी वही रहा था। अम्मा ने अब धीरे धीरे सुधा को भोला की ओर आकर्षित करने के लिए रोज कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया, जैसे बहू आज खीर बना ले, भोला को बहुत पसंद है। सुधा ने जब खीर परोसी तो भोला ने पूछा, आज खीर किस खुशी में? अम्मा ने कहा, सुधा ने बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना, बाकी उसी से पूछ ले। और सुधा गर्दन नीची कर मुस्कुरा कर रह जाती। भोला अम्मा के सामने क्या कहे, बस गर्दन झुका कर खाना खाकर मुस्कुराते हुए उठकर चला जाता। अम्मा भी अब एक आशा की किरण देख पा रही थी, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। पर अम्मा ने भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे और ना ही सुधा की उम्मीद टूटने दी। कभी सुधा को भोला की पसंद की साड़ी पहनने को कहती, कभी उसकी पसंद का श्रृंगार, कभी खाने में कुछ उसकी पसंद अपनी तरफ से। दोनों सास बहू जी जान से लगी थी। जल्दी ही होली आने वाली थी, ब्याह को कम से कम साल भर होने को आया, पर दोनों के रिश्ते में अभी एहसास की कमी थी। अगले ही रोज पड़ोसी में चाची के घर केशव का फोन आया कि इस बार होली को घर ना आ पाएगा। अब अम्मा बेचारी उदास हो गई, एक बेटा बाहर, साल भर का त्योहार। तभी अम्मा को उदास देखकर भोला ने कहा, अम्मा तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, मैं केशव को ये तेरे बनाए सारे पकवान और मिठाई देकर आऊंगा। अब मैं नहीं पढ़ सका तो पढ़ाई की अहमियत तो जानता ही हूं। अम्मा की आंखें भी चमक गईं, भले ही बेटे से मिल ना पाए पर उनका प्यार जो उन्होंने इस पकवानों और मिठाई में भरा था, कम से कम वही बेटे तक पहुंच जाए, इसकी उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। साथ ही अम्मा ने इस मौके पर सुधा के लिए भी कुछ सोच लिया था। अब अम्मा ने दोनों को केशव का सामान लेकर भेज दिया। स्टेशन पर इतनी भीड़ देखकर सुधा घबरा गई और सीढ़ियों से उसका पांव फिसल गया। सही समय पर भोला ने उसका हाथ पकड़कर थाम लिया, नहीं तो उसके पैर का टूटना निश्चित था। बस भोला ने हाथ क्या पकड़ा, मानो सुधा को जीवन भर के लिए अपना बना लेने को काफी था। अब दोनों पूरे सफर में साथ साथ बैठे उतर कर भी एक दूसरे का हाथ कसकर थामे हुए थे। जहां सुधा अब जानबूझकर डर रही थी, वहीं भोला भी जरूरत से ज्यादा ख्याल रख रहा था। केशव को सामान पहुंचाकर घर पहुंचकर अम्मा ने जाने कैसे ये सब भांप लिया और सुधा से बोली, चल बहू आज तो ठाकुर जी को खीर का भोग लगा ही दूं, आखिरकार उन्होंने मेरी ये मुराद पूरी ही कर दी। सुधा नजरें झुकाकर कमरे की तरफ चली गई और भोला सब कुछ जानकर भी अनजान बन गया। दो दिन बाद होली आने को है, पर इस बार की होली कुछ खास है। भोला और सुधा के लिए दोनों के नए रिश्ते में प्रेम के रंग तो होली के कारण ही गहरे हुए थे, इस बार की होली तो दोनों ही के लिए यादगार रहने वाली थी। साथ ही अम्मा भी अब अपने बच्चों को खुश देखकर संतुष्ट थी। उन्हें सारी उम्र यही लगता रहा कि पिता को खोने का दर्द भले ही सब बच्चों को मिला पर अकेले भोला ने इस दर्द को भुगता है, अपना भी और अपने भाई बहनों का भी। इस बार तो होली की गुजिया खूब बनेंगी भी और गांव में बटेंगी भी। अम्मा के मन में तो एक और विचार जन्म ले रहा था, बस केशव घर आए तो दो फोन भी मंगा ले सुधा और भोला के लिए, ताकि खेतों में जाकर भी भोला कुछ अपनी सुधा से बात कर सके। वैसे इसके लिए बहाना भी खूब बनाया था कि केशव से बात करनी हो तो घर घर झांकना पड़ता है, पर उसके लिए तो एक ही फोन बहुत, तो दो क्यों? अगर कभी भोला खेत में चला गया तो शाम तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्या? जो भी खिचड़ी पक रही थी सुधा को सब समझ आ रहा था, पर भोला के पास सब कुछ जानकर भी अनजान बनने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। कहानी यहीं तक थी, कैसी लगी बताइएगा जरूर, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही इसी तरह की कहानी फिर से लाऊं और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सुनाने की कोशिश करूं। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए अंत तक, शुक्रिया।